उपस्थित सुधीजनों देवियों, कठोपनिषद में आपने सुना नचिकेता के तीसरे वर पर मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु इस प्रश्न का जवाब देना नहीं चाहता है, क्योंकि ये परखना चाहता है कि जो ज्ञान है उसको पाने वाला अधिकारी सही हो गलत व्यक्ति। अगर उसकी योग्यता नहीं है ज्ञान पाने की, या गलत दिमाग वाला व्यक्ति है तो गलत इस्तेमाल करेगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या नॉलेज है, ज्ञान है। जो बदमाश आदमी है वो ज्ञान इसीलिए अर्जन करना चाहता है कि दूसरों को नीचा दिखाना है। जो साधु आदमी है वो ज्ञान इसीलिए लेना चाहता है कि दूसरों को ऊपर उठाना है, दूसरों को सिखाना है। धन तो धन है, पर बुरा आदमी धन इसीलिए कमाना चाहता है कि दूसरों को दबाना है धन के द्वारा। अच्छा आदमी धन कमाता है खुद के साथ साथ दूसरों को भी उन्नति, दूसरों को भी ऊपर उठाना है। बुरा आदमी ताकत से दूसरों को दबाता है, अच्छे आदमी के पास ताकत होता है तो दूसरों को बचाता है। तो दुनिया में वस्तु अच्छा या बुरा नहीं है, कैसे व्यक्ति के हाथ में पड़ता है ये मायने करता है। बिजली से आपके घर के, आपकी जिंदगी के सारी चीजें बिजली के कारण चलती हैं। आपकी एसी, आपके खाना बनाते हैं, आपके घर के सैकड़ों काम ऐसी बिजली के कारण होता है। पर उस बिजली को यूज करने वाला कोई दुष्ट व्यक्ति है जो सैकड़ों लोगों को उससे मार सकता है। इसीलिए आचार्य को यह चिंता रहती थी कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो गलत हाथ में तो नहीं जाएगा। नचिकेता को उन्होंने डराया, देखो ये बड़ा मुश्किल विद्या है, बड़े बड़े देवताओं ने भी इस पर पूछा है, उनको भी शंका रहती है हमेशा से, उनको भी इसका उत्तर नहीं मिला, वो भी परेशान है, वो भी बड़े क्यूरिशियस है कि क्या है मरने के बाद। ये देवता पर थोड़ी सी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। जो दूसरों की बुराई करता है, पाप करता है, हम कहते हैं वो नरक जाता है, दुख भोगता है। इसी तरह जो दूसरों का भला करता है, पुण्य करता है, उसको स्वर्ग मिलता है। जो नरक जाता है, बुरा करता है, पाप करता है, वो राक्षस है, असुर है। जो दूसरों का भला करता है, पुण्य करता है, वो देव है। देवता मतलब स्वर्ग में स्वर्ग भोगते हैं, असुर नरक भोगते हैं। पर मोक्ष इन दोनों से अलग है। जितना मोक्ष के रास्ते पर, मुक्ति के रास्ते पर नरक बाधा है, स्वर्ग भी इतना ही बाधा होती है। मोक्ष स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग है कि अच्छा काम करने से सुख भोगना, नरक है बुरा काम करने से दुख भोगना। अच्छा और बुरा क्या है? दूसरों को नुकसान पहुंचाना बुरा है, दूसरों को मदद पहुंचाना, दूसरों का भला करना अच्छा है। पर दोनों आपको हमें बांधते हैं दुनिया से। एक लोहे की जंजीर है नरक, और दूसरे सोने की जंजीर है स्वर्ग। दोनों बांधते हैं। आप अपने तोते को पिंजरे में रखते हो, लोहे के पिंजरे में रखते हो तो कड़कड़ आवाज करता है, देखने में अच्छा नहीं है, सस्ता है, तो दिमागी तौर पर हम थोड़े दुखी होते हैं। सोने के पिंजरे में रखते हैं तो हो सकता है आवाज अच्छा हो, देखने में चमकदार हो, महंगा हो, थोड़ा अंदर से खुशी महसूस करे। पर तोते के लिए लोहे का पिंजरा हो या सोने के पिंजरा हो, दोनों में वो बंधा रहता है, तड़पता है, परेशान होता है। आम आदमी जिसको दुनियादारी कम पता है वो लोहे और जंजीर के फर्क में खुश रहता है, समझदार आदमी तोते की तरह तड़पता रहता है, उसके लिए दोनों जंजीर हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो देवता लोगों को भी ये जानने की चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको भी पता है कि एक दिन सुकर्म खत्म हो जाएगा, शुभ कर्म खत्म हो जाएगा, फिर वापस उसी जन्म मृत्यु के चक्र में सुख दुख में बंधना पड़ेगा। तो देवता ज्ञानी लोग, इतने महान लोग, उनको क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि बड़ा सूक्ष्म है आत्मा, बुद्धि से परे है। जहां तक तुम्हारी बुद्धि जा सकती है वहां तक आत्मा नहीं रह सकती है, नहीं मिल सकती है। जहां बुद्धि का सीमा रेखा, बुद्धि की सीमा रेखा खत्म हो जाती है, वहीं से आत्मा की अवस्थिति शुरू होती है। बुद्धि ऑब्जेक्ट तक जाता है, विषय को ग्रहण करता है, पर मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, विषयी हूं, मैं विषयों को जानता हूं, बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। बुद्धि इसीलिए अंदर की यात्रा नहीं कर सकती। बुद्धि से आप दुनिया के हर चीज को जान सकते हो, जो नहीं जाना कल जानोगे। हमारा जो नया विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, यही तो करता है, दुनिया की हर कण कण को ढूंढता है। जो कल तक पता नहीं था वो आज पता चला, जो 100 साल पहले पता नहीं था वो 100 साल बाद पता चला, जो पता चला जो नहीं चला वो कल चलेगा। जितनी आपकी बुद्धि विकसित होगी, आप में से जितने ज्यादा बुद्धिमान लोग बढ़ेंगे उतना विज्ञान की उन्नति होगी, संसार की नई नई चीजों की खोज होगी। पर आपने कभी नोट किया है कि जब से विज्ञान की तरक्की हुई है 600 साल में, 16वीं शताब्दी में यह मॉडर्न साइंस सामने आया जिसका रूप के रूप में, ये 400-500 साल में जितने विज्ञान की उन्नति हुई, हमने दुनिया की जितने नई नई चीजों को खोजा और गर्व किया और उसको भोगा, उतना ही 400 साल में आत्मा की ओर यात्रा कमी हुई। अध्यात्म के नाम पर पाखंड बढ़े, बदमाशियां बढ़ी, पर अध्यात्म ज्ञानी बहुत कम होते गए। सन्यासी बहुत बढ़े, भक्त भी बढ़े, सब बढ़े, पर अंदर की यात्रा, असलियत में अध्यात्म ज्ञानी कम होते गए। क्योंकि अंदर की यात्रा के साथ बुद्धि का कोई संबंध नहीं है, खुद को जानने के साथ बुद्धि का कोई संबंध नहीं है, बुद्धि का दुनिया से संबंध है। इसीलिए विज्ञान का वास्ता बुद्धि पर है, विज्ञान बुद्धि आश्रित है। बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो तो आप साइंस पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पर आत्मज्ञान बुद्धि से परे है। और पतंजलि तो लिखते हैं, आत्मा को जानने के लिए बुद्धिहीन होना जरूरी है। इसीलिए पहला सूत्र लिखते हैं, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग का अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों को रोकना। चित्त मतलब मन, मन की वृत्ति मतलब मन का एक ही काम है, ज्ञान करना, अच्छा बुरा। जो आप खाते हो कि मुझे खाने को मन करता है, मतलब उस खाने के स्वाद को चखने की मन करता है, वो चखना ज्ञान होता है। आप जो कुछ हो, इंद्रियों को सुख भोगते हो, दुख भोगते हो, वो एक्चुअली ज्ञान के अलग अलग रूप है। और पतंजलि कहते हैं यही खत्म होना जरूरी है। जहां तक बुद्धि जा सकती है वहां तक आत्मा नहीं। इसीलिए देवता भी ज्यादा बुद्धिमान है, समझदार है, तभी तो पाप नहीं करते, पुण्य करते, उसके बावजूद भी उनको कठिनाई होती है आत्मा को समझने के लिए। तो यम ने कहा, देवताओं ने भी इस पर पूछा, उनको भी जवाब नहीं मिल रहा है तो तुम्हें कहां से मिलेगा, तुम कोई दूसरा सवाल पूछो। नचिकेता ने बड़ी मजबूती से, दृढ़ता से उस बात को खंडन किया, मुझे वही चाहिए। अगर देवताओं को नहीं मिला इसका मतलब है कि ज्ञान कुछ गहराई वाला है और मैंने कोई गलत जगह कोई छोटी मोटी चीजों पर हाथ नहीं लगाया, मैंने कुछ अच्छे मजबूती चीजों पर हाथ लगाया, अब तो पक्का हो गया कि मैंने कोई सस्ता सौदा नहीं किया, अब तो मुझे यही चाहिए। यमराज की पहली परीक्षा में नचिकेता पास हुआ, दूसरी परीक्षा उससे ज्यादा कठिन लेनी थी यमराज को, ज्यादा कठोर है, ज्यादा कठिन है, वो क्या है? प्रलोभन, लालच। एक काम करो, तुम ऐसा वर मांगो कि तुम जितने साल जीना चाहो जी सकते हो, इस पूरी धरती पर राजा बन सकते हो, करोड़ों रुपए की संपत्ति मांगो, घोड़े मांगो, हाथी मांगो, रथ मांगो, सुंदर सुंदर नारियां मांगो, सब देने को तैयार हूं। ये बड़ी कठिन परीक्षा है क्योंकि आसानी से मना नहीं किया जा सकता। ये ऐसी चीजें हैं, अगर मना कर दें तो सालों तक नींद नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कितना बेवकूफ हूं। अगर खुद को समझदार समझ के मना कर दिया, बीवी बच्चे तो छोड़ेंगे नहीं, किस गधे से शादी कर दी, मिला मिला चीज छोड़ दिया, जमाना जीने नहीं देगा, इतना बुद्धू है बेवकूफ है, सब मिलाता छोड़ के आ गया। बड़ा मुश्किल काम है। नचिकेता को यमराज ने अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए, दुनिया में ऐसे प्रलोभन जो जिसके लिए हम तड़पते हैं जिंदगी भर, जिसके लिए अच्छा बुरा एक नंबरी दो नंबरी चार नंबरी सब करते रहते हैं। नचिकेता ने कहा, क्या कहा, आज का श्लोक है, शोभावमर्त्यस्य यदन्तकेतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। ये जो चीजें आप मुझे ऑफर कर रहे हो, ये शोभावा है, स्व कहते हैं संस्कृत में आने वाले कल को, टुमरो को, ये कल इनका अभाव हो जाता है, मतलब ये अस्थाई हैं, वो थोड़ी दिन के लिए होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते हैं। तुम सुंदर स्त्रियां दोगे, 50 साल के बाद वो बुढ़िया हो जाएंगी। अब अच्छा घर दोगे, मैं ही बुढ़ा हो जाऊंगा। दूसरी चीजें जो दोगे वो हमेशा तो रहेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अगली बात है कि इनको भोगने से भोगते भोगते मैं ही बुढ़ा हो जाऊंगा। हो सकता है वो ताजा रहे पर भोगने लायक मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा भोगेंगे इंद्रियां उतनी ज्यादा कमजोर होगी, इंद्रियां उतनी ज्यादा निस्तेज होगी। इसीलिए या तो मैं भोगने लायक बन रह नहीं पाऊंगा, या जो भोग है वो भोगने लायक ही नहीं रहेंगे। तो ये तो बकवास चीज है, तुम अपने पास रखो वो नाच गीत सुंदर जो भी चीजें, तुम अपने पास रखो, मुझे उसमें मत फंसाओ। सुख भोगने से इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। जिस खाने को खाने के लिए आप परेशान है, तड़पते हैं, आप बीवी को 50 बार बोल चुके हैं कि ये खाना बनाओ, बड़े मुश्किल से बनाती है कभी, या रेस्टोरेंट में ढूंढते रहते हैं किसी खास जगह आपने खाया था, आपके मन में इतनी व्याकुलताएं हैं कि उस चीज के गंध से भी आप तड़प जाते हैं, कहां मिलेगा मैं खाऊंगा। और जिस दिन वो चीज आपको खाने को मिला, भरपेट मिला, पहली बार मिला, दोबारा मिला, 3 बार मिला, 5 दिन तक मिला, 5वें दिन वो आपको नरक क्या नरक बना देगा। पहले दिन जो आपके लिए स्वर्ग सुख लाया, 5वें दिन तक आपको उल्टी होने लगेगी उस चीज से, खा खा करके। आपको हलवा पसंद है, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि यहां ज्यादा हलवा बनाते, आपको रसगुल्ला पसंद है, आपको रसमलाई पसंद, कुछ भी पसंद है, रोज खिलाए आपको नाश्ते में खाने में रात के खाने में, क्योंकि आपको पसंद है। पहली बार जब खाएंगे, पहला रसगुल्ला जब खाएंगे तो आप बड़े मस्ती में खाएंगे, लगेगा जिंदगी का बहुत कुछ अचीव कर लिया जो बहुत दिनों से नहीं मिला था, काफी दिनों से नहीं मिला था। दूसरे में उससे कम सुख होगा, तीसरे में थोड़ा कम होगा, 12-14 रसगुल्ले खा गए, 14 रसगुल्ले तक तो उल्टी आने लगेगी। अगर दिन रात खिलाने चले और 5 दिन तक कोई रोटी नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई कुछ नहीं, रसगुल्ला और पानी के अलावा कुछ नहीं, तो आप उल्टी करने लगेंगे और 5 साल तक उसका शकल नहीं देखना पसंद करेंगे। मतलब जो भोग के वस्तु है उनको भोगने से संवेदनाएं, उसके प्रति जो आपकी चाहत वही खत्म हो जाता है। जितना अधिक भोगेंगे उतना इंद्रियां, जैसे ये नशा करते हैं ना, शुरू शुरू में जब शुरू करते हैं उनको टोको मना करो, दोस्त कहते हैं बस मैं तो कभी कभी ले लेता हूं दोस्तों के साथ, रोज थोड़े ही लेता हूं। शायद आप लोगों ने चाय पीना भी ऐसे ही शुरू किया, कभी कभी पी लेते हैं जब सर्दी जुकाम होता है, रोज नहीं पीते, आदत पड़ जाएगी। वो आदत कैसे पड़े, कभी कभी तो पीते हैं, फिर ऐसी हो जाती है नींद खुलती है चाय पीने पर। अब इसी तरह शराब पीने वालों की, इसी तरह नशा करने वालों की, अब नशा असर नहीं करती है। जैसे आप दवाइयां खाते हैं ना, ज्यादा दवाइयां रेगुलर खाने लगे अब दवाइयां असर करना बंद कर देती है, बॉडी उसको रिएक्ट करना बंद कर देती है, फिर हाई डोज लेते हैं, फिर और डोज बढ़ाना पड़ता है। दिल्ली के पास मेरठ में एक व्यक्ति है, अभी भी है, अब वो जहरीले सांपों से डसवाता है तो भी मुश्किल से 5-10 मिनट टिक पाता है, तड़पता रहता है, नशा किया, ज्यादा ज्यादा अफीम वगैरह लेने लगा, अब वो असर नहीं हुआ, वो ज्यादा ही कुछ लेने लगा, फिर जब असर नहीं हुआ तो आसपास गरीब था, ज्यादा पैसा तो सारा उड़ गया नशों में, तो बिच्छुओं से जहरीले इंसेक्ट से डसवाता था, अब वो असर नहीं हुआ, सांपों से डसवाया, थोड़ी देर तक नशा रहती थी, अब पैसा दे करके जहरीले सांप मंगवाता है, डसवाता है, नशा है, अब वो रिएक्ट नहीं करता बड़ी, अफीम 1 किलो खा लो लगता है जैसे चना चबा लिया, कुछ नहीं, पेट भर जाता है, असर नहीं होता है, आपको तो सूंघा दे बेहोश हो जाएंगे। पश्चिम की जो भोगवाद संस्कृति यही तो है। अगर आप बारीकी से पश्चिमी लोगों की हाव भाव को देखते होंगे तो आपको पता लगता होगा, दुनिया में जितने भी गंदी बीमारियां सब पश्चिम से शुरू हुई, जितने तरह की गंदी बातें कभी कोई सोच भी नहीं सकता सब पश्चिम वालों ने पैदा किया, पुरुष स्त्री के संबंध से लेकर, पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री संबंध से लेकर, छोटे बच्चों तक के लेकर, जानवरों के साथ संबंध बनाने तक सब पश्चिमी लोग करते हैं। क्यों करते, भोग भोग के अब अरुचि हो जाती है, फिर नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, गंदा लगता है, वो क्या करे, उनका बॉडी अब उसको रेस्पॉन्स नहीं करता, उनको कुछ और टेस्ट चाहिए, फिर वो गंदा हो अच्छा हो कैसा भी हो नया टेस्ट चाहिए, फिर आखिर में फ्रस्ट्रेशन होकर आत्महत्या करते हैं। हॉलीवुड में बॉलीवुड में यही तो होता है, भोग भोग करके 38-40 साल का नहीं होता है खुद को मार डालते हैं, क्या भोगे और कुछ बचा ही नहीं है, सीधा उल्टा गंदा जो कुछ मिला सब टेस्ट कर डाला, अब मजा नहीं आता है, दुनिया में मजाहीन हो गया। तभी भारत में शादी तक लड़के लड़की से मिलने नहीं देते थे, कम से कम जितना आप कम चीज को मिलेगा उतना आपका आकर्षण बना रहेगा, अब आकर्षण नहीं रहा, मन अब पसंद अब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आप पश्चिम में शादी का कंसेप्ट कम हो रहा है। क्यों, शादी एक एडमिशन टिकट था, अब वो खत्म हो गया, जो होना था शादी से पहले हो गया, शादी करने के बाद और इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्यों करें, फिर तलाक देना पड़ेगा, कागजात करनी पड़ेगी, तलाक तो देना ही देना है, क्योंकि मन उब चुका है और उससे आगे और कुछ सोचा नहीं है कि लाइफ में और कुछ होता है पति पत्नी में। हिंदुस्तानियों को कम समझ में आता है, अब हिंदुस्तानियों को ज्यादा ही समझ में आने लग गया है, उनके वहां भी तलाक बढ़ने लग गए, क्योंकि शादी आकर्षण का के लिए नहीं था, क्योंकि वो तो 3 दिन का है, रसगुल्ला आप कितना खाएंगे। भोग की सीमा है, भोग के लिए करेंगे तो आत्महत्या करना आखिर ऑप्शन है, क्योंकि आप कुछ भी भोगेंगे थोड़ी दिन के बाद वो बोरियत होने लगेगी। इसीलिए समझदार मां बाप बच्चों को कभी कभी आइसक्रीम खिलाते हैं, पिज्जा खिलाते हैं। वो जरूरी है, लाइफ का अंग है। नालायक मां बाप रोज खिलाते हैं, थोड़ी दिन के बाद वो उन चीजों में वो उब जाएगा, आप उसको आइसक्रीम पसंद नहीं आएगा, आप उसको पिज्जा बर्गर भी पसंद नहीं आएगा, जिनके लिए आप तड़पते हैं वो तो ऐसे चीजें ढूंढेगा, और वो आपके थ्रू नहीं ढूंढेगा, वो अपने दोस्तों के थ्रू ढूंढेगा। आपको तब पता चलेगा जब मेडिकल लाने लायक होगा उसके, वो क्या कहते हैं, वो नशा उतारने वाले के लिए लेना पड़ेगा। तो नचिकेता कहता है, जो कुछ तुम्हें मुझे देना चाहते हो वो मेरे इंद्रियों को वैसे ही खराब कर देने वाली है, और इतनी ज्यादा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसीलिए इसको अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और बड़ी मजेदार बात की अगला श्लोक, नवित्ते न तर्पणियो मनुष्यो लप्स्या महे वित्तम द्राक्ष्म चेत्वा जीवी श्यामो या वदिशिष्यसी त्वं वरस्तु मे वरणीय सैव। पहली लाइन ध्यान दीजिएगा, इंसान धन से कभी तृप्त नहीं होता है। आप किसी व्यक्ति को पैसा देकर के खुश कराना चाहेंगे, असंभव है। पैसा दिया, धन दिया, खुश होगा, अगले क्षण उसकी डिमांड और बढ़ेगा। इसीलिए हम जिंदगी भर तड़पते हैं, हो सकता है पैसे के लिए नहीं पर दूसरे सांसारिक सुख के लिए। इंसान को धन से कभी तृप्ति होती ही नहीं है, इसलिए मनुस्मृति में लिखा, जैसे को कृष्ण ने गीता में कोट किया, नकामो कामानाम उपभागे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मेव भूयोप्यभिवर्धते। आग को बुझाने के लिए घी डालेंगे तो आग बुझती नहीं और धधक कर जलती है, इच्छाओं को बुझाने के लिए भोगेंगे तो इच्छाएं बुझती नहीं और भोग की डिमांड करती है, बोर हो जाती है तो नए नए भोग की डिमांड करती है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इस मानसिक स्थिति को समझा था, तभी शंकराचार्य अपने चरपटिका मंजरी में लिखते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बाल पक गए हैं, दांत गिर चुके हैं, चमड़े ढीले पड़ चुके हैं, डंडा लेकर चलना पड़ता है, पर क्या आप करें, अभी भी मन में इच्छा है वो सब करने की जो जवानी में करते थे, पर क्या करें, आप शरीर साथ नहीं देता है, बुढ़ापा में वैराग्य नहीं आता, मजबूरी में वैराग्य अपनाना पड़ता है, शरीर साथ नहीं देता, इच्छाएं मरती नहीं है, अगर मरती तो उस बुजुर्ग आदमी के अंदर तो पहले मरनी चाहिए थी, क्योंकि हाथ पैर काम नहीं करता, नहीं उसकी इच्छाओं को भी बारीकी से देखेंगे, वो भी चाहता है मैं दोबारा जवान हो जाऊं। जवान इसलिए नहीं हूं कि मैं काम करूं, मैं दुनिया देखूं, नहीं, उन सब चीजों को भोगूं जो बेटे और पोते भोग रहे हैं। इच्छाएं कभी भोगने से शांत नहीं होती, बढ़ती हैं। इसलिए हे मृत्यु, तुम मुझे ये इच्छाएं शांत करने का तरीका मत बताओ, तेरे से ज्यादा मैं जानता हूं। इंसान कभी धन से तृप्त नहीं होता। और रही बात, जब तक तुम हो तब तक कभी कोई व्यक्ति शांति से सुख से भोग नहीं सकता। तुम मौत, जब तक मौत है और जो मौत को जानता है वो जीवन में कभी कुछ सवाल नहीं उठता, कुछ शांति से भोग पाए। हम सब मौत का नाम लेते ही डरते हैं, क्यों? दिमाग खराब हो जाएगा, खाना भी ढंग से नहीं खा सकते, पिक्चर भी ढंग से नहीं देख सकते, प्रवचन भी ढंग से नहीं सुन सकते। उसके नाम सुनते घर में इसीलिए मना होता है कि आप किसी व्यक्ति को कह दो कि अगर ये मर जाए, ऐसे कैसे, कितना पापी आदमी हो, बुरा चाहते हो, मौत का नाम भी नहीं ले सकते। मौत की याद आते ही हम अमृत की खोज करते हैं, क्योंकि अमृत मिलता नहीं है हमें आसानी से, इसीलिए हम डरते हैं। पर ध्यान रखिए, अमृत उन्हीं को मिला जो मौत को 24 घंटे याद करते रहे। अमर वही होते हैं जो मौत को 24 घंटे सामने रखते हैं। जैसे बिल्ली आंख बंद के दूध पीता है ना, कि मुझे कोई देखता नहीं है, वो खुद की आंख बंद कर देती है दूध पीते समय, तो कहावत है। वो इसलिए बंद करती है कि अच्छा मुझे अब कोई देख नहीं रहा है। हम जो मौत का नाम नहीं लेते तो इसी तरह के होते बिल्ली आंख बंद के दूध पीने वाली, कि मैं नाम नहीं लूंगा तो अब मौत मेरे आसपास आएगा नहीं। पर दुनिया में ऐसा देखा गया, आप नाम लो ना लो, कुछ भी करो, जाना तो पड़ता ही है। सिर्फ वही लोग मौत से पार जाते हैं जो मृत्यु को याद रखते हैं। मृत्यु एक तरह की महात्मा है, साधु है, सन्यासी है, अच्छा आदमी है। जैसे महात्माओं के संगत में आप जाते हैं तो आप अच्छा बन जाते हैं, इसी तरह मृत्यु के संगत में जो रहता है वो अपने आप अच्छा बन ही जाता है, वो अमरत्व को प्राप्त कर ही जाता है। हर मौत हमारे लिए ये खबर लेकर आती है, पड़ोसी में किसी का भी मौत हो, ये खबर लेकर आती है कि तुझे भी मरना है। जब भी कोई मरता है, जिन जो होश वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको एहसास होता है मुझे भी मरना है। जब बेहोशी में चले जाएं तो पता नहीं चलता। पर हम हमेशा इस बहम में जीते हैं, यह इंसान की सबसे बड़ा बहम है कि सब मरेंगे, शायद मैं ही मरूंगा, दुनिया में कोई अगर एक्सेप्शन है तो मैं हूं। यह हर आदमी को होता है। बिजली गिरती है, लोग मरते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लोगों को बीमारियां होती, मेरे साथ नहीं होगा। जिनको होता है वो भी यही सोचते हैं। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है, युधिष्ठिर और यक्ष के साथ वन पर्व में आता है। उसमें बड़े सारे प्रश्न और उत्तर है, और बड़े समझदार प्रश्न उत्तर है। उसमें एक प्रश्न यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से, बताओ दुनिया में सबसे आश्चर्य की चीज क्या है, कमाल की चीज क्या है? तो युधिष्ठिर बताता है कि हर रोज लोग मरते हैं, हर रोज लोग मरते हैं, जो बचे हुए होते हैं वो ये सोच के जिंदा रहते हैं कि मैं शायद नहीं मरूंगा। यही दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। हर जिंदा आदमी सोचता है मैं कभी नहीं मरूंगा, और वो हर रोज सामने देखता है कोई ना कोई मरता है। इससे बड़ा आश्चर्य, मतलब सच को न स्वीकार करना, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो ही नहीं सकता। और हम सब उसी में है। हम अपने आप को अपवाद समझते हैं, बाकी सब मर सकते हैं, मैं नहीं मर सकता। ये जो अमरता की बहम हमारे अंदर है, जो भ्रम हम पाल रखे हैं, यही हमें वो जैसे नशे में आदमी थोड़ा उसको लगता है मुझे बड़ा मीठा मीठा अच्छा लग रहा है, वो जो वो अच्छा नहीं होता है, वो बेहोशी होती है, हम वो भ्रम होता है। इसी तरह हम भ्रम में जीते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। इसलिए तुम जब तक हो, सामने हो, तब तक तो किसी को कोई सुख मिलने से रहा। इसीलिए आदमी तुम्हारे नाम लेने से डरता है, क्योंकि वो सोचता है जो भी खाऊं पीऊं थोड़ा आराम से तो खाऊं, मौत का नाम आते ही सब खराब हो जाएगा। आप एक भला चंगा आदमी को एक ज्योतिषी बोल दे, ज्योतिषी जो ज्योतिषियों पर भरोसा करते हैं, कि आप मुश्किल से एक साल अब आपका आयु है, यकीन मानिए वो 6 महीने में मरा हुआ मिलेगा। मृत्यु सामने दिखता है, वैसे ही उसके शरीर क्षीण होता जाएगा। इसलिए बड़े बड़े बीमारियों में डॉक्टर आसानी से बताते नहीं है, घर वालों को बताते हैं, बीमार को छुपाते हैं। बहुत लोग जिनकी विल पावर मजबूत है वो सुन के भी मजबूत रहते हैं, पर बड़े सारे होते हैं कमजोर दिल वाले, सुनते ही वो 15 साल की जिंदगी 15 दिन में ही उनका अपने आप खत्म हो जाता है। तुम सामने हो, वैसे ही आदमी ज्यादा दिन नहीं जिएगा, अमरत्व का वर लेकर क्या करूंगा। इसीलिए हे यमराज, मुझे तो सिर्फ वही एक वर चाहिए जो तुमसे मैंने मांगा, कि मरने के बाद क्या होता है ये मुझे आप बता दो, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्संपराये महति ब्रूहीणस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मान्नाचिकेता वृणीते। लगता है कुछ, वैसे आपको भी लगता है कुछ ज्यादा ही खींच गया है। तीसरा वर कितने दिनों से खींच रहा है, यहां भी खींच रहा है, वो मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं नहीं खींच रहा हूं, वो यमराज खुद खींच रहा है। वो अब भी जवाब आसानी से नहीं देने वाला है। आप सोच रहे हो आज जवाब देगा, आज भी नहीं देगा, 2 चैप्टर के बाद देगा। नचिकेता कहता है कि ये जो आपने लंबी चौड़ी भूमिका बांधी, इससे मुझे पता लगा कि जो मैंने मांगा, जानने की इच्छा की, वो कोई आसान चीज नहीं है, कोई हल्की फुल्की चीज नहीं, कोई सस्ती चीज नहीं है। मैंने कोई बहुत बड़ी चीज पर हाथ लगाया जिसके लिए आप परेशान होते हो, देने के लिए तैयार नहीं होते हो। बस मुझे वही जानना है, सांपराय परलोक में मरने के बाद क्या होता है, बस आप मुझे यही बता दो, इसके अलावा मुझे वर के रूप में और कुछ नहीं चाहिए। यमराज की दूसरी कठोर परीक्षा में नचिकेता पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ। दुनिया के 700 करोड़ लोग में से 699.99 करोड़ लोग फेल हो सकते हैं। इस मामले में गिने चुने लोग पास हो सकते हैं। नचिकेता पास हुआ तो आपको लगेगा नचिकेता बेवकूफ है, पर दुनिया में बेवकूफ लोग ही, जितने बेवकूफ लोग होते हैं दुनिया में वही बदलाव लाते हैं। समझदार लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, बेवकूफ लोग दुनिया की बदलाव दुनिया में बदलाव लाते हैं। वो जो साइंटिस्ट है जो पैसा कमाने के लिए नहीं, जो लैबोरेटरी में 24 घंटे में से 28 घंटे बैठता है, पैसे कमाने के लिए नशे में बैठता है, कुछ मुझे करके दिखाना है, जो बीवी बच्चों को भूल चुका है, बीवी बच्चों के नजर में बेवकूफ है, दुनिया के नजर में बेवकूफ है, जो फटा पुराना कपड़ा पहनता है, जिसके कपड़े में से बदबू आता है, पता नहीं खाता है कि नहीं खाता है, लैबोरेटरी में पड़ा रहता है, वो बेवकूफ है दुनिया की नजर में, पर वो बेवकूफ दुनिया में बदलाव लाता है। वो नेता जो 24 घंटे में से 22 घंटे जगे रहता है, वो जन नेता जो दुनिया जनता की भलाई के लिए उपाय सोचता रहता है, दुनिया की नजर में बेवकूफ है, ये सोचता नहीं है, सोता नहीं है, खाता नहीं है, अपने लिए सोचता नहीं है, पर उसकी वो बेवकूफी दुनिया में बदलाव लाता है। हमेशा ध्यान रखिए, समझदार लोग हम उसे कहते हैं जो खुद के लिए जीता है, बेवकूफ हम उसी को कहते हैं जो दुनिया के लिए जीता है। मतलब हर बेवकूफ ऐसा नहीं होता, कुछ दूसरे बेवकूफ भी होते हैं जो सचमुच बेवकूफ है, जो ना दुनिया के लिए जीते ना खुद के लिए जीते हैं। पर उन बेवकूफों में एक वर्ग यह भी होता है जो दुनिया के लिए जीता है खुद के लिए नहीं जीता है। वो भी बेवकूफ के जो कैटेगराइजेशन करेंगे उसमें यह भी एक आएगा। सारे बेवकूफ ऐसे नहीं होते। तो नचिकेता अपनी परीक्षा में पास हुआ। अब यमराज मनी मन सोच रहे हैं, ये बोल नहीं रहे, सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अन्य श्रेयो अन्य दुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति ही यते अर्थात यो प्रेयो प्रणीते। नचिकेता की तारीफ कर रहा है यमराज, पर उससे पहले वो एक खास बात बताना चाहता है। बोलता है दुनिया में दो तरह की रास्ता है, दो मार्ग है, एक श्रेय मार्ग एक प्रेय मार्ग। प्रेय जो प्रिय लगे, जो अच्छा लगे, प्लीजेंट हो, प्लीजरेबल हो, मजा आए, रसगुल्ला खाने में मजा आता है, बात करने में मजा आता है, अच्छे कपड़े पहनने में मजा आता है, बहुत पैसा कमाने में मजा आता है, बहुत प्रशंसा सुनने में मजा आता है, ये प्रिय है। एक है श्रेय मार्ग, उसमें मजा बिल्कुल नहीं आता है। मम्मी पापा रोज टोकते हैं, टीचर्स रोज टोकते हैं, साधु सन्यासी अच्छे लोग रोज टोकते हैं, ऐसा मत करो वो करो, बड़ा चिढ़ मचता है, बड़ा गुस्सा आता है, बच्चों को भी आता है, बूढ़ों को भी आता है, सबको गुस्सा आता है। कभी ये प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं लगता, पर जो उनको हजम कर लेता है वो फिर श्रेष्ठ बन जाता है, अच्छा बन जाता है। करेले की सब्जी, नीम की पत्ते की भुजिया खिलाते हैं पूरे सर्दी में। हमारे यहाँ ये वसंत स्प्रिंग सीजन में वो जो जो नीम के कढ़ी होती है उसकी भुजिया खिलाते थे बच्चों को, हमेशा दो चार सात दिन तक बच्चे थू थू करते थे, माँ बाप जबरदस्ती खिलाते थे वो, इसीलिए कि स्प्रिंग में ज्यादा वो स्किन डिजीज होती है उससे बचने के लिए। जो श्रेय है वो करेला है, करेले की सब्जी, उसमें आमचूर डाल के नहीं बनाने वाला, मतलब सीधा करेले की सब्जी, उसमें आमचूर या और कुछ वो बीज निकाल के उसको उबाल के पानी निकाल के वाला सब्जी नहीं, वो तो फिर प्रिय मार्ग हो गया, वो तो अच्छा लगेगा। सीधा करेले को भून के खिलाया, नीम के पत्ते को भून के खिलाया, जिंदगी भर खाइए कुछ नहीं समस्या होगी, पर खाएंगे फायदा उसमें जरूर है। पर रसगुल्ला टॉफी चॉकलेट और भी बहुत सारी चीजें खाने में बड़ा मजा आता है, दुनिया भर के मसाला डाल के खाने में मजा आता है, पर आगे जाकर बड़ा नुकसान करता है। तो जो मजा देता है वो प्रेय है, जो मजा नहीं देता पर अच्छा है वो श्रेय है। पढ़ना लिखना श्रेय मार्ग है, अच्छा नहीं लगता, बहुतों को अच्छा नहीं लगता, बच्चों को तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबको नहीं, बहुत सारे बच्चों को होमवर्क कराना सबसे कठिन काम है। माँ बाप बैठ के टीवी देखेंगे, मेरा बड़ा भाई बड़ी बहन बैठ के टीवी देखेंगे, मुझे कहते होमवर्क करो, कितने ना इंसाफी है मेरे साथ, कितना जुर्म हो रहा है। बड़े हैं तो फायदा उठाते हैं, मुझे कहते हैं टीवी देखो, टीवी नहीं देखना, सिर्फ एक घंटे देखना, दो घंटे देखना, कितनी ना इंसाफी है, मजा नहीं आता है, गाली देने को मन करता है बच्चों को, माँ बाप को, कैसे माँ बाप है। वही बच्चे जब आगे बड़े हो जाते हैं फिर बूढ़े माँ बाप की तारीफ करते करते थकते नहीं है। कुछ लोग बुढ़ापा में भी तारीफ नहीं करते हैं क्योंकि सेवा करनी पड़ेगी, मरने के बाद बहुत करते हैं, मेरे बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जीते जी नहीं किया, डर के मारे ये बोलना पड़ेगा तो फिर बाप की सेवा करनी पड़ेगी, तो मरने के बाद खूब तारीफ करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं मेरे बाप के कारण मैं हूं। पर उस समय बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो दो तरह के मार्ग दुनिया में होते हैं, एक श्रेय मार्ग एक प्रिय मार्ग। एक मार्ग जो अच्छा लगता है, दूसरा मार्ग जो अच्छा लगता नहीं है पर अच्छा होता है। समझदार लोग श्रेय को चुनते हैं, कड़वापन है तब भी चुनते हैं, नासमझ लोग प्रेय को चुनते हैं, मिठास वाले को चुनते हैं। इसको थोड़ी दो चार उदाहरण दूं। हमारे में से ज्यादातर को सबको और बहुत सारे लोगों को प्रशंसा बड़ी पसंद है, सबको पसंद है, कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद है, वो हर बात पर तारीफ सुनना चाहते हैं, खाएं तो भी वो चाहते हैं कि कोई कहे कि आपने अच्छी तरह से खाया, ये भी तारीफ सुनना चाहते हैं। अगर वो आपको गाली भी दिया वो भी उसके बदले में चाहते हैं कि आप तारीफ करेंगे अपने अच्छी गाली दी। ये कुछ लोगों की बड़ी बीमारी है प्रशंसा सुनने की, और ये एक दो नहीं करोड़ों में आपको मिलेंगे, और नहीं तो वो उदास रहेंगे। वैसे सबको प्रशंसा सुनने की अच्छी बात है, पर पता है महापुरुष क्या कहते हैं इंसान के लिए, ये थोड़ी समस्या क्या है ना, ये प्राच्य और पश्चिमी संस्कृति की बड़ी अंतर है। पश्चिम में जो अच्छा माना जाता है पूर्व में वो बुरा माना जाता है। हमारी संस्कृति में हमारे दर्शन में महापुरुष कहते हैं प्रशंसा से ज्यादा बड़ा जहर कुछ होता नहीं है। वैसे पश्चिम में मानते हैं तारीफ करना अच्छी बात है, क्योंकि ये मार्केटिंग सोसाइटी है, यहां तारीफ कस्टमर की तारीफ करने से सामान बिकता है, सामान की तारीफ करने से कस्टमर खरीदता है, यहां इंसान का वैल्यू कस्टमर से ज्यादा नहीं होता। इसीलिए हमारे यहां माना जाता था कि प्रशंसा करने से व्यक्ति बिगड़ता है, इसीलिए प्राचीन काल की जो गुरु परंपरा थी, अच्छा गुरु वो है जो बड़ा मुंह लटका के घूमे। चाणक्य अपने शिष्यों से बोलता है मुद्रा राक्षस नाटक में, जब वो चंद्रगुप्त के राज्य को संवारने में लगा है, नंद वंश को खत्म करने में लगा है, दुनिया भर के राजनीति कूटनीति तिकड़मबाजी में फंसा हुआ है, पर है तो गुरुकुल का आचार्य, वो मंत्री है चंद्रगुप्त का, पर रहता है अपनी झोंपड़पट्टी में। शाम को आता है तो एक दिन अपने शिष्यों से कहता है मुझे माफ करना, मैं बहुत दिनों से राजनीति की व्यस्तता के कारण आप लोगों से गुरु सुलभ कोप नहीं दिखा पा रहा हूं। शब्द पर ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि गुरु सुलभ स्नेह नहीं दिखा पा रहा हूं, कोप मतलब गुस्सा नहीं दिखा पा रहा हूं। गुरु का गुस्सा करना यह अच्छे गुरु का लक्षण होता है, खुंदक निकालना नहीं, ध्यान रखिएगा, खुंदक अलग चीज होता है। आजकल जो टीचर है उनको गुरु मत समझिएगा, उनका गुस्सा कम खुंदक ज्यादा होता है, उनका फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है, बीबी से लड़ाई करके आते हैं, बच्चे को पिटाई करते हैं, गाली देते हैं, बात यह नहीं है। गुस्सा मतलब किसी को अच्छा बनाने के लिए जब हम तड़पते हैं, परेशान होते हैं, सामने वाला नहीं पकड़ पाता है तो गुस्सा करते हैं। गुस्सा इसीलिए नहीं कि उसने मुझे वहां नमस्ते नहीं किया तो वो उसका बदला क्लासरूम में खड़े होकर के कठिन सवाल पर के खड़े करो। वो भारत में आजकल जो पिटाई होती है टीचरों के द्वारा, वो टीचर इसलिए नहीं पिटते हैं कि बच्चों को अच्छा बनाना, इसलिए कि उनका अपना खुंदक भड़ास निकालते हैं। तो इसीलिए आप ये मत समझिए कि भारत के टीचर जो पिटाई करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं, ये बड़ी गंदी चीज है, मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। वो जो एक स्वाभाविक गुस्सा है सामने वाले की उन्नति के लिए, तो चाणक्य माफी मांगता है, माफ कर देना मैं आप पर गुस्सा नहीं कर पा रहा हूं, गुरु सुलभ गुस्सा, ये श्रेय मार्ग होता था गुरुकुल में। बच्चा अगर गुरु ने अगर उसको डांटा नहीं, कुछ टोका नहीं, तो उसको लगता था शायद गुरु मुझे पसंद नहीं करते। आज भी बहुत सारे लोग, भारत में यहां के नहीं जानता हूं, क्लासरूम में अगर टीचर किसी बच्चे को महीनों तक टोका नहीं तो बच्चे को लगता है कि टीचर मुझे इग्नोर करता है, मेरे से नाराज है। अच्छे बच्चे को आज भी टीचर मारता नहीं तो टोकता जरूर है, गुस्सा आज भी करता है जिससे वो प्यार करता है, क्योंकि वो श्रेय चाहता है। श्रेय और प्रेय क्या है, अगले रविवार को इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कठोपनिषद क्या कहता है। आज थोड़ी सी आपके सामने भूमिका रखी, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, ओम शांति।